नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द फेयर टैक्स बुक, साइंग गुड बाय टू द इनकम टैक्स एंड द IRS, नील बोर्च और तत्कालीन कांग्रेस सदस्य जॉन लिंडर की सार्वजनिक नीति और कर सुधार पर केंद्रित पुस्तक है। यह पुस्तक 2005 में फेयर टैक्स एक्ट के समर्थन में प्रकाशित हुई थी। इसका केंद्रीय प्रस्ताव मौजूदा संघीय आयकर व्यवस्था पेरोल करो, कॉरपोरेट आयकर, पूंजीगत लाभ कर, उपहार कर और संपत्ति कर को हटाकर नए वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा खरीद पर एक राष्ट्रीय बिक्री कर लागू करना है। लेखक इस बदलाव को केवल कर दर बदलने के रूप में नहीं, बल्कि कराधान के आधार को आय और उत्पादन से हटाकर उपभोग पर ले जाने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पुस्तक का उद्देश्य पाठक को यह समझाना है कि जटिल कर संहिता, IRS की प्रशासनिक भूमिका और छिपे हुए करों के स्थान पर अधिक प्रत्यक्ष व्यवस्था क्यों लाई जानी चाहिए। इसका स्वर स्पष्ट रूप से पक्षधर है, फिर भी यह कर नीति के बड़े प्रश्नों जैसे पारदर्शिता, अनुपालन लागत, वितरणात्मक न्याय और सरकारी राजस्व पर विचार करने का उपयोगी प्रवेश बिंदु देती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, आय पर कर से उपभोग पर कर लगाने का मूल प्रस्ताव। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि संघीय सरकार को लोगों की कमाई, बचत, निवेश और रोजगार पर अलग अलग कर लगाने के बजाय अंतिम खुदरा उपभोग पर एक ही राष्ट्रीय कर लगाना चाहिए। लेखक के अनुसार, वर्तमान व्यवस्था में आय अर्जित करते समय, वेतन देते समय, लाभ कमाते समय और निवेश से लाभ मिलने पर करों की अनेक परतें बनती हैं। फेयर टैक्स मॉडल इन संघीय करों को हटाकर नए सामान और सेवाएं खरीदने के समय कर वसूलने का प्रस्ताव रखता है। प्रयुक्त वस्तुएं इस मॉडल में मुख्य कराधार से बाहर रहने की कल्पना की जाती है, क्योंकि उन पर पहली बिक्री के समय कर लग चुका होगा। लेखक इसे उस सिद्धांत से जोड़ते हैं कि नागरिक को पहले अपनी आय पर पूरा नियंत्रण मिलना चाहिए और कर तब देना चाहिए जब वह खर्च करने का निर्णय ले। प्रस्तावित दर को लेकर सार्वजनिक बहस भी पुस्तक के संदर्भ का अहम हिस्सा है। समर्थक इसे कर सहित कीमत के अनुपात में 23% कहते हैं, जबकि आलोचक इसे कर पूर्व कीमत पर लगभग 30% की वृद्धि के रूप में व्यक्त करते हैं। यह अंतर केवल गणितीय भाषा का नहीं है, इससे उपभोक्ता की कीमत संबंधी समझ, नीति की प्रस्तुति और प्रस्ताव की राजनीतिक स्वीकार्यता प्रभावित होती है। इसलिए पुस्तक का मूल तर्क समझते समय कराधार, दर की परिभाषा और वास्तविक खुदरा मूल्य तीनों को साथ देखना आवश्यक है। दूसरा, प्रीबेट के माध्यम से गरीबी स्तर तक की खपत को करमुक्त करने की कोशिश। राष्ट्रीय बिक्री कर पर सबसे स्वाभाविक आपत्ति यह है कि कम आय वाले परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च करते हैं, इसलिए उपभोग कर उन पर अनुपातिक रूप से अधिक भारी पड़ सकता है। द फेयर टैक्स बुक इस प्रश्न का उत्तर प्रीबेट व्यवस्था से देती है। प्रस्ताव के अनुसार, पात्र नागरिकों और कानूनी निवासियों वाले परिवारों को हर महीने अग्रिम भुगतान मिलेगा, जिसका उद्देश्य गरीबी स्तर तक आवश्यक खपत पर लगने वाले कर की भरपाई करना है। लेखक इसे साधारण छूट के बजाय सार्वभौमिक अग्रिम रिबेट के रूप में देखते हैं। इसका आशय है कि परिवार को कर राहत पाने के लिए वर्ष समाप्त होने तक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, न ही उसे आयकर रिटर्न में जटिल कटौती सिद्ध करनी होगी। सिद्धांततः गरीबी स्तर तक की खरीद पर शुद्ध कर भार शून्य करने का प्रयास किया जाता है, जबकि उससे अधिक उपभोग पर कर लागू रहता है। यह स्तर डिजाइन समान दर और प्रगतिशील परिणाम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। फिर भी इसकी प्रभावशीलता प्रशासनिक विवरणों पर निर्भर करती है, जैसे परिवार की परिभाषा, निवास की पात्रता, लाभ भुगतान की शुद्धता और गरीबी सीमा का अद्यतन। पुस्तक प्रीबेट को निष्पक्षता का केंद्रीय उपकरण मानती है, पर पाठक को यह भी पूछना चाहिए कि सार्वभौमिक मासिक भुगतान की लागत और संचालन कितने भरोसेमंद ढंग से संभाले जाएंगे। तीसरा, IRS समाप्त करने और कर अनुपालन की लागत घटाने का दावा। लेखक मौजूदा संघीय कर व्यवस्था की आलोचना केवल इसलिए नहीं करते कि उसमें कर देना पड़ता है। उनका बड़ा तर्क यह है कि आयकर प्रणाली नागरिकों, नियोक्ताओं और व्यवसायों से रिकॉर्ड रखने, फॉर्म भरने, नियम समझने और विशेषज्ञ सलाह लेने में बहुत समय और धन खर्च कराती है। उनके अनुसार, कर संहिता की जटिलता राजनीतिक हस्तक्षेप के अवसर भी बढ़ाती है, क्योंकि विशेष कटौतियां, क्रेडिट और अपवाद अलग अलग समूहों को प्रभावित कर सकते हैं। फेयर टैक्स प्रस्ताव में व्यक्तिगत आयकर रिटर्न और संघीय पेरोल कर समाप्त होने पर IRS की वर्तमान भूमिका समाप्त करने की बात है। कर संग्रह मुख्यतः खुदरा विक्रेता के बिक्री बिंदु पर केंद्रित होगा और राज्यों की मौजूदा बिक्री कर प्रशासन क्षमता का उपयोग करने की परिकल्पना की जाती है। इस तर्क की ताकत यह है कि कर का भुगतान उपभोक्ता को खरीद के समय दिखाई देगा और अधिकांश परिवारों को वार्षिक आयकर दाखिल करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन प्रशासन गायब नहीं होता, उसका स्वरूप बदलता है। खुदरा विक्रेताओं का पंजीकरण, बिक्री का सत्यापन, प्रीबेट वितरण, कर चोरी की रोकथाम और सेवा तथा नए या प्रयुक्त सामान की सीमा तय करना, सभी के लिए नियम और प्रवर्तन चाहिए। पुस्तक सरलता का एक सशक्त पक्ष रखती है, जबकि आलोचनात्मक पाठ यह जांचता है कि सरलीकरण वास्तव में कितना प्रशासनिक स्थानांतरण है और कितना वास्तविक कमी। चौथा, छिपे हुए करों को कीमतों में शामिल मानने और पारदर्शिता बढ़ाने का तर्क। द फेयर टैक्स बुक का एक विशिष्ट तर्क यह है कि वर्तमान व्यवस्था में कर केवल वे नहीं है जो व्यक्ति अपने आयकर फॉर्म में देखता है। लेखक कहते हैं कि पेरोल कर, कॉरपोरेट आयकर और उत्पादन श्रृंखला में लगे अन्य कर अंततः वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समाहित हो सकते हैं। इस दृष्टि से उपभोक्ता कई करों का भार चुकाता है, पर उसे यह स्पष्ट नहीं दिखता कि कीमत का कितना हिस्सा करों से जुड़ा है। फेयर टैक्स का प्रस्ताव इस कथित अदृश्यता के बदले बिक्री रसीद पर स्पष्ट कर दिखाने का है। लेखक मानते हैं कि जब कर प्रत्यक्ष दिखेगा, तब नागरिक सरकारी खर्च और कराधान के संबंध को अधिक सावधानी से परखेंगे। यह तर्क कर नीति को लोकतांत्रिक जवाबदेही से जोड़ता है। फिर भी कीमतों के बारे में इसका निष्कर्ष स्वतः सिद्ध नहीं माना जा सकता। किसी कर के हटने पर लागत, मजदूरी, लाभ, प्रतिस्पर्धा और बाजार संरचना किस तरह बदलेंगे, यह अलग उद्योगों में अलग हो सकता है। इसी तरह नया बिक्री कर खुदरा कीमतों और खरीद व्यवहार को प्रभावित करेगा। पुस्तक पारदर्शिता को मुख्य लाभ बताती है, लेकिन गंभीर पाठक को करों के कानूनी दायित्व और उनके आर्थिक भार के बीच अंतर समझना चाहिए। कौन कर जमा करता है और कौन उसका अंतिम भार वहन करता है, ये हमेशा एक ही प्रश्न नहीं होते। अंत में राजस्व तटस्थता, खर्च नियंत्रण और प्रवर्तन पर प्रमुख सीमाएं। पुस्तक फेयर टैक्स को व्यापक कर सुधार के रूप में पेश करती है, न कि सरकारी आकार घटाने की योजना के रूप में। यही बिंदु इसकी सबसे महत्वपूर्ण सीमाओं में से एक है। प्रस्ताव को आम तौर पर राजस्व तटस्थ ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात लक्ष्य मौजूदा संघीय करों के स्थान पर लगभग समान राजस्व जुटाना है। इसलिए कर संग्रह की विधि बदलने से अपने आप सरकारी खर्च, घाटा या सार्वजनिक ऋण कम नहीं होता। कुछ मुक्ततावादी आलोचकों ने इसी आधार पर कहा कि यह व्यवस्था सरकार के आकार को चुनौती देने के बजाय कराधान को पुनर्व्यवस्थित करती है। दूसरी व्यावहारिक चुनौती कर चोरी और कराधार की रक्षा है। यदि राष्ट्रीय बिक्री कर की दर ऊंची हो, तो अनौपचारिक लेन देन, गलत वर्गीकरण, सीमा पार खरीद या व्यवसाय द्वारा अंतिम उपभोग को व्यावसायिक खरीद बताने जैसी प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन बढ़ सकता है। राज्य बिक्री करों से अनुभव मिल सकता है, पर संघीय स्तर पर एक बड़े कर का पैमाना अलग होगा। इसके अतिरिक्त संक्रमण का प्रश्न भी कठिन है। जिन लोगों ने आयकर व्यवस्था में बचत की है, वे नई खरीद पर बिक्री कर का सामना कर सकते हैं। पुस्तक समर्थक उत्तर देती है कि आय और निवेश पर कर हटने से व्यापक आर्थिक लाभ होंगे, लेकिन यह पुस्तक पढ़ते समय नीति के आदर्श, डिजाइन और उसके विधायी, प्रशासनिक तथा व्यवहारिक क्रियान्वयन के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। निष्कर्ष में, द फेयर टैक्स बुक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अमेरिकी कर व्यवस्था की जटिलता से असंतुष्ट हैं और आय आधारित कराधान के विकल्प को उसके समर्थकों की भाषा में समझना चाहते हैं। वाले मेरा श्री तैयारी पिंजर और मुता उड़ी तो वो ऐसो करवन यसे होली गारी तो खार खा अर्थियस खोर खेस। सार्वजनिक नीति, अर्थशास्त्र, उद्यमिता, नागरिक स्वतंत्रता या कर सुधार में रुचि रखने वाले पाठक इससे लाभ ले सकते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक बौद्धिक लाभ यह है कि यह पाठक को करों को केवल दरों की सूची नहीं, बल्कि प्रोत्साहनों, प्रशासनिक लागत, उपभोक्ता कीमतों और राजनीतिक जवाबदेही की व्यवस्था के रूप में देखने को प्रेरित करती है। प्रीबेट का विचार भी यह स्पष्ट करता है कि समान कर दर और समान कर भार एक ही बात नहीं है। इस श्रेणी की अधिक तकनीकी कर नीति पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान इसकी सरल, अभियानमुखी और प्रत्यक्ष प्रस्तुति है। नील बोर्च और जॉन लिंडर एक संपूर्ण वैकल्पिक ढांचा सामने रखते हैं, जिसमें IRS हटाने, कर को खरीद के समय दृश्यमान बनाने और घरेलू आय को आयकर से मुक्त करने के लक्ष्य जुड़े हैं। यही स्पष्टता पुस्तक की ताकत है, पर यही इसका पक्षधर स्वभाव भी है। इसे अंतिम आर्थिक निर्णय के बजाय एक प्रभावशाली नीति प्रस्ताव के रूप में पढ़ना बेहतर है। संतुलित समझ के लिए पाठक को राजस्व अनुमान, कर चोरी, संक्रमण लागत, कीमतों में बदलाव और वितरणात्मक प्रभावों पर आलोचनात्मक विश्लेषण भी साथ देखना चाहिए। तब यह पुस्तक केवल फेयर टैक्स का समर्थन नहीं, बल्कि इस मूल प्रश्न पर गंभीर विचार का माध्यम बनेगी कि सरकार को राजस्व किस आधार पर और किस पारदर्शिता से जुटाना चाहिए। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं नील बोर्ड्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।